आज हम बात करने जा रहे हैं विलायत और रहबरी की। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहनों में आता है कि इस्लामी नुक्ते निगाह से विलायत और रहबरी के क्या मफहूम है, उसका क्या मतलब है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज इस रात की मुनासिबत से, जो कि इंतहाई बाबरकत रात है,
बेशक
जिसमें इस्मत तहारत आसमान इस्मत व तहारत पर जो है वो 12वां मासूम तलु हुआ है और जनाब गुलिस्तान इमामत में आज 10वां फूल खिला है, इसकी मुनासिबत से मैं सहर आलमी टेलीविज़न की पूरी टीम आपकी खिदमत में और अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस शब की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंतहाई अहम मौजू है और आपने इंतहाई खूबसूरत सवाल किया कि इस्लाम के अंदर या इस्लामी नुक्ता निगाह से रहबरी और विलायत की क्या अहमियत है। इससे पहले हम इसको तारीख के आईने में देखते हैं। जब हम तारीख के आईने में विलायत और रहबरी को देखते हैं तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद मोहतरम पर विलायत हासिल थी, जिसका बेहतरीन नमूना ये है कि आपके नबी आपके वालिद जो के नबी थे मगर उसके बावजूद आपके फिराक में उनकी आंखें जो हैं वो बिनाई खो चुकी थीं। जब हम देखते हैं कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता अपने वालिद मोहतरम की तरफ रवाना करते हैं तो उनके वालिद मोहतरम जो है अपने बेटे की खुशबू को महसूस करते हैं और जैसे ही वो कुर्ता आप अपनी आंखों पर लगाते हैं तो आपको शिफा हासिल हो जाती है। इसी तरह से जनाब मूसा को जनाब हारून पर विलायत व इमामत हासिल थी। इसी तरह से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इंतहाई संगीन इम्तिहानात में से गुजरने के बाद ये विलायत और रहबरी का जो है वो ओहदा खुदा बंदे मुताल ने अता फरमाया था, यानी जब आपको आग के अंदर फेंका गया तो आग गुलजार बन गई तो इसके बदले में आपको विलायत और रहबरी का ओहदा मिला, जिसके लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा बंदे मुताल के हजूर दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार इस चीज़ को मेरी औलाद के अंदर भी करार दे। तो खुदा बंदे मुताल ने इरशाद फरमाया था कि ये जो हमारा वादा है वो जालिमीन के साथ नहीं होगा, जो हमारे अतात गुजार बंदे होंगे ये सिर्फ उन्हीं के साथ जो है मरबूत होगा। इस हम वादे को देखते हैं कि जब ये वादा चलते चलते जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब की नस्ल की तरफ आता है तो एक तरफ नबूवत आ जाती है और दूसरी तरफ जो है वो इमामत और विलायत और रहबरी आ जाती है। अब विलायत के मुख्तलिफ मानी लुगत की किताबों में किए गए हैं और आयात कुरानी की रोशनी में जब हम विलायत मुतलका को देखते हैं तो उससे फ़कत और फ़कत खुदावंद मुताल की ज़ात जो है वो मंसूब है। विलायत या विला का लफ्ज़ वाली से निकला है, जिसके मानी ये हैं कि जब कोई शय किसी दूसरी शय के पीछे इस तरह से चलती है कि उस शय को अपने करीब कर लेती है। अगर दूसरे लफ्जों में हम विलायत का माना जो है वो बयान करें तो उसका मानी कुर्ब और नजदीकी के हैं, इसीलिए खुदावंदे मुताल के नजदीक होने को भी विलायत से मंसूब किया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया असद अब्बास शाह साहब, हम इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शाह साहब, हम लोग बात कर रहे थे, आप हमें मफहूम बता रहे थे कि इस्लाम के नुक्ते निगाह से रहबरी क्या होनी चाहिए, और हमारी रिपोर्ट जो साथियों ने बनाई है उसमें भी रहबरी का उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब बताया। मैं चाहूँगी अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए।
इसके बाद जब हम इसकी इस्तिलाही इस्लाह देखते हैं रहबरियत की, यानी किसी माशरे के अंदर एक ऐसी शख्सियत का मौजूद होना जो अपने मानने वालों को या अपने पैरोकारों को एक खुदा के नज़दीक कर सके, दूसरी उनकी कायदाना सलाहियतों को उभार सके, तीसरा ये कि उनकी अकल को जो है वो तकमील तक पहुंचा सके, उनके अंदर से जो उनके माशी मसाइल हैं इनका हल तलाश कर सके, इन लोगों को गुर्बत से निकाल कर जो है एक अच्छे मायारी ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई कर सके, इस तरह बहुत सारी रहबरियत की जो मिसालें हैं हमें तारीख इस्लाम के अंदर मिलती हैं। हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दौरे हयात को देखें और उसके बाद आपके दौरे हुकूमत को देखें कि किस तरह से इमाम ने लोगों की रहबरियत की और किस तरह से लोगों को उन रोशन असूलों के तहत चलाया कि उस दौर के लोग खुद ये कहने पर जो है मजबूर हो गए थे कि आज हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को दर्क किया है, ज़माने को दर्क किया है, यानी ये वही अदालत है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम दिया करते थे, ये वही मसावात है जिसका दर्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में किसी किस्म का कोई भी मायार बाकी नहीं रहा था। आपने एक ऐसा मुआशी निज़ाम मुतारिफ करवाया था जिसमें गुलाम
और आका के हकूक जो हैं वो बराबर हो गए थे।
जी
और इसके अलावा आपने अदालत को रवाज दिया था। किसी भी मुआशरे की जवाल उस वक़्त शुरू होती है जब उसमें बेअदालत गरी शुरू हो जाए,
जी
जब वहाँ से अदालत जो है वो कूच कर जाए, वहाँ के काजी जो हैं वो हुक्मरानों की मर्जियों के मुताबिक जो हैं अवाम के फैसले करने शुरू कर दें, उस वक़्त उस मुआशरे से जो है अदालत का खात्मा हो जाता है और उस मुआशरे की पस्ती का दौर शुरू शुरू हो जाता है। उसके
जी
बाद हम इस रहबरियत के उनसर को हर इमाम के दौर में देखते हैं, बिलखसूस आज उस इमाम की जिसकी आज विलादत है, इनके दौर में ये उनसर इंतहाई नुमाया तौर पर हमें नजर आता है, क्योंकि इस दौर के अंदर हजरत इमाम नकी अलैहिस्सलाम पर काफी ज्यादा सख्तियां थी। आपके मानने वाले आप तक अप्रोच नहीं कर सकते थे, आप तक रसाई हासिल नहीं कर
ठीक
सकते
तरह
थे,
से
अपने मसाइल आपसे मुस्तकीम नहीं पूछ सकते थे। इसके लिए इमाम ने एक साजमान वकालत का इनेकाद किया, यानी एक वकालती निज़ाम को मुतारिफ करवाया जिसके जरिए से मुख्तलिफ इलाकों में इमाम ने अपने नुमाइंदे मुकरर किए। अब लोग इमाम से डायरेक्ट सवाल नहीं करते थे, उन
नुमाइंदों से
नुमाइंदों
करते
के
थे।
जरिए से इमाम के साथ अपना राबता जो है वो बरकरार करते थे। और उसके अलावा इमाम को जब मदीने से सामरा लाया गया तो इमाम ने एक इंतहाई हम कह सकते हैं कैद खाने की सी जिंदगी को गुजारा है, क्योंकि इमाम के ऊपर मुसलसल या आज के दौर के मुताबिक जिसे हम कह सकते हैं किसी को किसी के घर के अंदर नजरबंद कर देना और
जी
उसकी तमाम हरकतों सकनात पर एक गहरी नजर रखना और उनके मिलने जुलने वालों के तमाम
पाबंदी
अतवारों
करना,
तरीके को भी अपने मुकम्मल कंट्रोल में रखना, ये जिंदगी इमाम की थी जिसमें इमाम ने अपने मिलने वालों के साथ अपने मानने वालों के साथ इस साजमान वकालत के जरिए से राबता कायम किया। इसमें हम देखते हैं इमाम को जो हदीये जो नजूरात मिलती थीं वो भी ये इमाम के नुमाइंदे और वकील जो है वो हासिल करते थे और इनको इमाम की खिदमत में पेश करते थे। इस दौर में कलामी मुबाहिस बहुत ज्यादा अरूज पैदा कर चुकी थी जिसमें मोतजिला अशायरा जो हैं ये मशहूर फिरके हैं और इसके अलावा इस दौर में जो है मुफव्विज और खालिक खल्के कुरान और इन जैसे मसाइल जो हैं अपने अरूज पर पहुंच चुके थे लोगों को। और इस ये वो दौर है जिसके अंदर इमाम ने जो है गालियों के साथ मुस्तकीम मुकाबला किया है, यानी इमाम हादी का वो दौर है जिसमें गाली बहुत ज्यादा अरूज पैदा कर चुके थे और उनके कायद भी मुख्तलिफ तरह के थे। इमाम ने इनके साथ एक मुनज्जम तौर पर जो है मुस्तदिल तरीके के जरिए इनके सवालात के जवाबात भी दिए और इन लोगों से बेजारी का इजहार भी किया कि जो गाली हैं और ये जो लोग हमसे मंसूब करते हैं कि हम जो हैं वो मुर्दों को जिंदगी देते हैं, इन जैसे मसाइल को इमाम ने जो है मुकम्मल इसका इनकार किया और इमाम ने कहा इन लोगों का हमारे साथ कोई ताल्लुक
ताल्लुक
नहीं
नहीं
है।
है। शाह साहब, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि मौला को जो है नज़रबंद कर दिया गया और वो उसके बाद भी अपनी विलायत और रहबरी का जो उनके ऊपर जो उनका हक है और जो उन पे हुक्म था वो निभा रहे थे, तो मुतवक्किल का दौर आता है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं।
देखें, मुतवक्किल का दौर इस तरह से तरतीब है कि इमाम ने जिन हुक्मरानों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा उनमें सबसे पहले मामून आता है, मामून के बाद मोतसिम आता है, मोतसिम के बाद वासिक का दौर आता है, वासिक के बाद मुतवक्किल का दौर है। अगर हम मुतवक्किल के दौर को देखें तो ये इमाम हादी या बिलखसूस अलवियान जो उस दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इमामों के चाहने वाले जो उस दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, ये उन तमाम के लिए इंतहाई सख्त दौर था। ये वो दौर था जिस दौर के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर हल चलाया गया और इर्द गिर्द के जितने भी मकान थे इनको गिरा कर वहाँ पर खेती बाड़ी का इंतज़ाम किया गया। और इसके अलावा हम इमाम की मुतवक्किल की इमाम के साथ दुश्मनी जो है इस सूरत में भी देख सकते हैं, इमाम ने इंतहाई जो है वो सख्ती के हालात में अपनी ज़िंदगी मुतवक्किल के दौर में गुजारी है और इस दौर में अलवियान का कत्लेआम जो है वो कसर से किया गया है और अक्सर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने जो ये वकालत का सिस्टम शुरू किया था इस सिस्टम को एक बुरे तरीके से जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये क्योंकि इमाम के जितने भी वाली थे या इमाम की तरफ से जितने भी वकील मुकर्रर किए गए थे उनको या तो जुदोकूब किया गया या फिर उनको जिंदानों में डाल दिया गया, कैद खानों में डाल दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। यानी ये इमाम के लिए इंतहाई सख्त दौर था, बिलखसूस इमाम के लिए भी सख्त दौर था और इमाम के मानने वालों के लिए भी एक सख्त दौर था। मगर फिर हम देखते हैं जब भी किसी खलीफा को मुश्किल आई है तो वो इमाम की तरफ रजू करता है। इस तरह हम देखते हैं बहुत सारी मिसालें हैं जो हमें इमाम नकी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलती हैं, जिनमें काजी जो है अपने फैसले देने से आजिज़ आ गए थे और खलीफा वक्त को जालिम व जाबिर होने के बावजूद इमाम इस्मत व तहारत के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ा और उनसे मदद मांगनी पड़ी। तो इमाम ने भी क्योंकि अपने उस विलायत के उहदे को और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसकी मदद भी की, क्योंकि इमाम का काम अपने दौर में जो है वो जहालत और तारीखी को दूर करना है, इसीलिए इमाम को लफ्ज़ हादी से मुलक्कब किया गया है, इमाम को हादी का लकब दिया गया है। इमाम ने ना सिर्फ अपने दुश्मनों की हदायत की बल्कि अपने मानने वालों की भी हदायत की। इस दौर में हम देखते हैं कि अब्बासी दौर जो है वो खिलाफत इंतहाई जो है वो सख्ती का शिकार हो गई, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे तुर्क गुलामों की हुकूमत आ गई थी और तुर्क गुलाम जो है अपने मुताबिक जो है वो खलीफा को चलाना शुरू हो गए थे और अक्सर तुर्क गुलाम जो थे वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे और वो जो है वो खलीफा को अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म करने पर उभारते थे। हम देखते हैं कि जब इमाम ने इन सारे हालात को गुजारा, गुजारने के बाद इमाम जो है मुस्तईन, मुंतसिर और उसके बाद मोतीज के दौर तक पहुंचते हैं। मोतीज का वो दौर है जिसमें इमाम को जो है वो खाने के जरिए जहर से हलाक कर दिया जाता है। यानी ये वो हालात हैं जिनमें हर किसी की कोशिश ये थी किसी ना किसी तरह से हम जो है वो हदायत के चिराग को जो है वो ख़त्म कर दें या फिर उसको जो है वो खामोश कर दें, मगर खुदावंदे मुताल जिसकी हिफाजत करना चाहे फिर उसको कौन खामोश कर सकता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे मुताल के हुक्म को जगह जगह पर आम किया।
इमाम जमाने के इमाम हमारे गैबत में है
जी।
तो इस वक्त रहबरी जो है किसके हाथ में, कौन रहबरी करेगा और लोग किस तरह से उस रहबर को पहचाने
जी। जिस तरह के मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि वलायत एक मुतलका मुराद है, एक वलायत बेमाना आम है, यानी आम माना अमूमी माना रखती है। हर वली जो है वो इमाम नहीं हो सकता और इमामत सिर्फ जो है वो वलायत तक ले जाने का एक सफर है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि इंतखाबे रहबर के लिए इमाम के बाद जो इमाम ने शराइत बताई हैं और कुरान ने हमारी रहनुमाई फरमाई है उसमें यह है कि वो कायदाना सलाहियतों का मालिक हो, फैसला करने की उसके अंदर कुव्वत मौजूद होनी चाहिए, तकवा और परहेजगारी उसका मंशूर हो, इसके अलावा वो डरपोक ना हो, बहादुर होना चाहिए और लोगों के साथ उनकी रहबरी करने के लिए हर किस्म के मसाइल जो और मुश्किलात को सामना करने की उसके अंदर जो है वो सलाहियत होनी चाहिए। हम देखते हैं आज अक्सर सवाल यही किया जाता है, बहुत सारे इलाके हैं उनमें हम किस तरह से अपना रहबर जो है मुंतखब करें, बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अपने रहबर के लिए जो है वो जस्तजू कर रहे हैं। उनके लिए एक तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक से सबसे बड़ा दर्स मिलता है कि जब भी मुश्किल वक़्त आ जाए तो सबसे पहले अपनी जानों का नजराना पेश करो, अपने प्यारों की जानों का नजराना पेश करो और उसके बाद जो है वो बात जो है अपने साथियों तक पहुंचनी चाहिए। यानी आज भी हमें रहबरी के इन तकाजों को पूरा करते हुए अगर हम चाहते हैं कि हम किसी मुआशरे की रहबरी करें या हमारे जवान जो हैं वो अपने रहबर को तलाश करना चाहते हैं, वो इन सारी जो शराइत हैं इनको मद्देनजर रखते हुए अपने इमाम का इंतखाब करें ताकि वो दुनिया और आखरत में सरखरू होकर खुदावंदे मुताल की बारगाह में भी कामयाब हो सके। इसके साथ साथ जरूरी ये है कि जब हम रहबर का इंतखाब कर लें तो फिर रहबर के हर कॉल और फेल को अपने लिए ज़रूरी करार दें। ये ना हो कि हम अपने रहबर की चंद बातों को तो माने जिनको हमारा दिल तस्लीम करता है और चंद बातें जो हमें बाज़ाहिर उनकी हकीकत मालूम नहीं होती ये फ़कत एक रहबर ही जान सकता है। जिस तरह से हम ये सिस्टम रहबरियत जो है ईरान के अंदर देखते हैं, हर शख्स जो है अपनी जान का नजराना जो है अपने रहबर के ऊपर फिदा करने के लिए हमें तैयार नज़र आता है और ना फकत वो ये तमाम अल्फाज अपनी गुफ्तगू तक महदूद रखता है बल्कि इसका अमली जामा हम मुख्तलिफ महाजों में देख चुके हैं और इसकी वाजिया मिसालें हमारे ईरान के अंदर जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं। लिहाजा हमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन तमाम शराइत को मद्देनज़र रखते हुए अपने रहबर का इंतखाब करना चाहिए, और फ़कत फिर इंतखाब करने के साथ साथ हमें उसकी पैरवी भी करनी चाहिए, क्योंकि विलायत का मतलब ही ये है कि किसी चीज़ की इस तरह से पैरवी करना कि उस चीज़ जो है आपको दूसरी चीज़ के करीब कर दे। इससे मुराद ये है कि अगर आप किसी शख्स की पैरवी करेंगे और वो आपको पैरवी करते हुए खुदा तक पहुँचा दे तो वो समझे आपका हकीकी रहबर है। अगर उसकी रहबरियत आपको खुदा से दूर करती है, उसके रसूल से दूर करती है, या फिर उनके आइमा से दूर करती है, तो फिर ये समझें कि ये रहबरियत बातिल है, क्योंकि कुरान की वाजिया आयत है यौम नदू कुल्लो उनासिम बे इमामहिम, उस दिन को याद करो जब तुम में से हर शख्स को जो है अपने इमाम के साथ, अपने रहबर के साथ जो है वो पुकारा जाएगा। तो लिहाजा इस दुनिया में एक ऐसे रहबर का इंतखाब कीजिए जो आपको आखरत में भी कामयाबी से हमकिनार कर सके, और इस दुनिया में भी आपकी मुश्किलात और तमाम किस्म के मसाइल का जो है वो आसानी से हल तलाश कर सके, और आखरत में जो है आपके लिए वो जो है बख्शिश का जरिया भी बन सके। ऐसे किसी शख्स को रहबर इंतखाब ना कीजिए कि जिसकी वजह से आप दो चार मुश्किलात हो जाएं।